مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. آئے ہم سب خداون کے حضور چکے ہیں. اس سے پہلے کہ خداون کے زندگی بخش کلام کو سیکھنا شروع کریں، اپنی ساری فکروں کو، اپنے سارے بوجھ کو، اپنی ساری پریشانی کو، اپنی ساری توجہ کو خداون کی طرف لگائیں گے اور اپنی سارے بوجھ کو اس کے ہاتھوں میں دیں گے، تاکہ روح سے معمور ہو کر اس کے کلام کی سچائیوں کو سمجھنے والے بنے. خاموشی میں ہر ایک اپنی روح میں علیحدگی میں خدا سے بات کرے. مسیح یسوع میں آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں. جب بھی ہم تھکے ماندے ہوتے ہیں، پریشانی، بوجھ، فکر، تکلیف، مصیبت، خداوند خدا، دنیا کے حالات، جب ہمیں خداوند خدا بے امید کر دیتے ہیں، بے یار و مددگار کر دیتے ہیں، تو خداوند تو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں اور تمہاری مدد کر سکتا ہوں. اور خداوند ہمارے پاس یہ حوصلہ کے طور پر بڑا بھروسہ ہے کہ تیرے فضل کے تخت کے پاس، جو ہر وقت تیرے لوگوں کے لیے خداوند خدا مہیا ہے، ہم سب پر تو بڑا رحم کرتا ہے، تیرا شکر کرتے ہیں. یسوع مسیح کے نام میں آج کے سارے کلام کے حصہ کو، آج جو کچھ بھی تیرے کلام میں سے سیکھیں، اسے خداوند خدا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ٹھہرا. سننے والوں کو جو موجودہ ہے اور جہاں کہیں بھی سنیں، یسوع مسیح کے نام میں ان کے سمجھوں کو روشن کر، تاکہ تیرے کلام کو جانے اور اپنی راہوں کو پہچانے. یسوع مسیح کے نام میں آمین. جیسا کہ ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں، افسیوں کے نام پالوس رسول کے خط میں سے، اور ہمارا مضمون ہے سیٹ، یعنی کہ مسیح یسوع میں ایمانداروں کی حالت، مقام، شناخت، ان کے لیے برکات کیا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، لیکن یاد دہانی کے طور پر افسیوں کا خط کا جو مطالعہ کرنے کا ہمارا طریقہ یا مضمون ہے، وہ ہے سٹیپ بائی سٹیپ، یعنی کہ سٹ، واک، سٹینڈ. سٹ یعنی کہ مسیح یسوع میں ایماندار کو ضرور ہے کہ اپنی حالت اور مقام کو جانے. اور ہماری حالت اور مقام یہ ہے کہ خدا باپ نے مسیح یسوع میں ہر ایک ایماندار کو آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا ہے اور ہر طرح کی روحانی برکات بخشی ہے. اور اس زمین پر جاننا ضرور ہے کہ مسیح یسوع میں، اس کی پہچان میں اور اس مقام میں جو اس نے بخشا ہے، اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ٹھہریں. اور واک کا مطلب ہے کہ خداوند کے جلال کے لیے، اس کی گواہی کے لیے، اس کی نمائندگی کرتے ہوئے زمین پر چلتے پھرتے ہوئے نظر آئیں اور خدا کی مانند یسوع مسیح کے ہم شکل بن کر اپنی زندگیوں سے ایسی قربانی چڑھائیں جو خدا کو پسند آئے. اور یہ قربانی صرف اور صرف روح القدس کی معموری میں معمور ہو کر ہی خدا کو پسندیدہ ٹھہرے گی. جب افسیوں 5:18 کے مطابق روح سے معمور ہوتے جائیں گے، تنہائی سے چلیں گے، تب ہماری روحانی قربانیاں اس کے حضور مقبول ٹھہریں گی. اور تیسرا جو ہے سٹینڈ، ابلیس کے سارے جلتے ہوئے تیروں کے مخالفت میں کھڑے ہونا اور خدا کے سب ہتھیاروں کو باندھنا. اور وہ ہتھیار کیا ہیں؟ بائبل مقدس اسے بتاتی ہے، افسیوں 6:6 اس کی 10 آیت سے 24 آیت تک، یہ سب ہتھیار ہیں جس میں قائم رہنا ہے، یعنی کہ سٹینڈ. اور ہم جو سیکھ رہے ہیں افسیوں 2:22 اس کی 22 آیت میں روح القدس کے بارے میں ان گہری سچائیوں کو، 22 آیت آپ کے لیے پڑھوں گا، اور لکھا ہے، اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو. इस आयत से जो हमें नजरिया जो आइडिया मिलता है ये है कि ईमानदार जो रूहुल कुद्दस में खुदा का मस्कन है उनको क्या कहा गया है, बहम तमीर किए जाते हो ताकि मुसलसल तौर पर तमीर यानी के तरक्की करना और जैसे के ईमानदार खुद अपने हालत को पहचान गए हैं कि वो खुदा का मकदस हैं, दूसरों को भी बताना, दूसरों को भी तामीर करना, दूसरों को भी बताना कि तुम मसीह यसू में क्या हो, तुम मसीह यसू में उसका मस्कन उसकी सुकूनत गाह हो। और हमने पिछले दिनों में खुदावन के कलाम में से पांच अनाम के बारे में सीखा, उन अजरों के बारे में सीखा जो ईमानदारों को हासिल हैं, जिन्हें ताज के तौर पर बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है, यानी के बाइबल मुकद्दस फतामंद मसीहियों को उन ताजों के बारे में, उन अनामों के बारे में और अजरों के बारे में बताती है, सिखाती है। और यादहानी के तौर पर जब हम देखते हैं इफिसियों 4:4 उसकी पहली आयत में, तो पौलुस रसूल कहता है मेरी खुशी का ताज। फिलिप्पी के ईमानदारों को पौलुस ने जो तालीम दी उनको सिखाया और वो मसीह यसू में हर तरह के दुख मुसीबत तकलीफ में कायम रहे, और जो बातें पीछे रह गईं ख्वाब उनकी नाकामियां थी कामयाबियां थी, उन सब को वो छोड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए और उस इनाम को हासिल किया, यानी के सादा तौर पर मसीह यसू में कायम होना। और दूसरा ताज हमने पहला थसलनीकियों उसका 2:19-20 में देखा था कि पौलुस रसूल कहता है कि भला हमारी उम्मीद और खुशी और फख्र का ताज क्या है, वो थसलनीके के ईमानदारों को। और पौलुस रसूल अकेला वहां पर खिदमत करता हुआ नजर नहीं आता, पौलुस है, उसके साथ सल्वेनस है, उसके साथ तमोथियस है, जो एक खादम के तौर पर खिदमत, जिसे पासबान कह सकते हैं। जब पासबान खुदा की खिदमत को अंजाम देता है, रूहों को बचाता है और वो रूहें मसीह में फतामंद जिंदगी गुजारते हैं, तो ये खुशी और फख्र का ताज जैसे पौलुस के लिए ठहरा, वैसे ही कहीं की भी वो कलीसिया हो वो पास्टर के लिए फख्र और खुशी का ताज खुदावन की हजूरी में ठहरेंगे जो ईमानदार फतामंद जिंदगी गुजारेंगे। तीसरा तमोथियस, दूसरा तमोथियस उसका 4:4 उसकी 8 में हम देखते हैं कि पौलुस रसूल तमोथियस को ये बातें सिखाता है कि आइंदा के लिए मेरे वास्ते वो रास्तबाजी का ताज, यानी कि उसे कहता है कि तू तालीम देने में, नसीहत करने में और खुदावन में जो दौड़ तूने शुरू की है, जो सफर तूने शुरू किया है, उसमें कायम रहना, उसमें मुसलसल तौर पर ईमान का प्रचार करना, और जब तू उस दौड़ को उस फतह को जीते जब उस फतह में शामिल होगा तो तुझे रास्तबाजी का ताज मिलेगा जैसे मुझे मिला है। और चौथा हमने यकूब के खत में से देखा था कि मुबारक है वो शख्स जो आजमाइशों की बर्दाश्त करता है कैसे भी हालात हों, और लिखा है कि तरह तरह की आजमाइश और इम्तिहान कैसे भी दुख हैं, आपकी मसीही जिंदगी जो अज़दवाजी जिंदगी है उसमें दुख है, हालात की वजह से है, घराने में है, या मुल्की हालात हैं, या आपके क्या कहते हैं माली हालात हैं, कैसी भी आजमाइश है, कैसा भी दुख है, जब उसमें हम या कोई भी ईमानदार उनकी बर्दाश्त करता है तो उसके लिए जिंदगी का ताज रखा हुआ है, और ये जिंदगी का ताज खुदावन्द यीशु मसीह उनको देगा जो उन सारी मुसीबतों में, सारी आजमाइशों में बर्दाश्त करके मकबूल ठहरेंगे। और पांचवा ताज हमने देखा था पहला पत्रस उसका 5:5 उसकी 2 से 4 तक, पत्रस जो खुद खुदा का क्या है, खुदा का चुना हुआ चरवाहा निगाबान बुजुर्ग है, वो अपने आप को कहता है कि जिस तरह मैं खुदा का बरगजीदा हूँ और तुम जो खुदा के बरगजीदा हो, यानी कि वो खादमों से पास्टर साहबान से बात करता है पासबानों से कि खुदा की खिदमत को लाचारी से और नजायज नफा के तौर पर नहीं बल्कि पूरे खुशी के साथ और ईमानदारी के साथ करो, ताकि जब वो सरदार गलाबान यानी कि यसु मसीह जो बड़ा चरवाहा है जब आए तो तुमको वो जलाल का सेहरा मिले जो मुरझाने का नहीं। ये पांच ताज हमने सीखे थे जिनमें हर एक ईमानदार के लिए ये मौका है कि वो इन ताजों को, इन अजीम बरकात को, इन अनामात को हासिल कर सकता है अपने मसीही चाल चलन से, मसीह के लिए जिंदगी गुजारने से। और यीशु मसीह का ये इंतबाह है यानी के अतला है, यानी के वो हमें खबरदार करता है। मुकाशवा जब 3 बाब उसकी 11वीं आयत को देखते हैं तो वो कहता है कि मैं जल्द आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज छीन ना ले। यानी कि हमारा एक मुखालफ है जो चाहता है कि जो सफर हमने शुरू किया है, किसी भी मसीही ने शुरू किया है, खा वो सफर आप 2 साल से शुरू किया है, 5 साल से, या 40 या 20 साल से उस सफर में हैं, अपने उस सफर को मुसलसल तौर पर तय करें, अपने उस सफर को मुसाफर की तरह मुसाफराना तौर पर करते रहें, उस सफर को मत खत्म करें, क्योंकि ये हमारी अपनी ख्वाहिश पर नहीं बल्कि उस खुदावंद की ख्वाहिश पर है। और उसकी ख्वाहिश ये है कि जब तक इस जमीन पर जीते हैं, इस जमीन पर उसी के लिए जीते रहें, उसी के लिए जिएं। और यीशु मसीह कहता है कि मैं जल्द आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह। वो तेरा ईमान है, वो वफादारी है, वो दुखों मुसीबतों का सामना है, कैसी भी हालत में तू है, मसीही जिंदगी को मत रोक, या मसीही जिंदगी का सफर जो तूने शुरू किया है उससे ये ना कह के मैं अब उकता गया हूं और इसे छोड़ता हूं, और ये है कि तेरा कोई ताज तुझसे छीन ले जब तू हार जाए या थक जाए या घबरा जाए। तो वो खबरदार करने के तौर पर कहता है कि मैं जल्द आने वाला हूं, अपने ताज को संभाले रह। और खुदावंद यीशु मसीह ने किस लिए आना है, मकाशफा 22वां बाब उसकी 12वीं आयत में, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक काम के मुआफक देने के लिए अजर मेरे पास है। वो हर एक को अजर देने के लिए आने वाला है और हर एक के काम के मुआफिक। ये अजर जो ईमानदार इस जमीन पर जिंदगी गुजारेंगे उनके कामों के मुआफिक होगा, और जब वो आएगा तो हर एक ईमानदार का हाल उसके सामने जाहिर हो जाएगा, खा वो काम बुरे हैं खा वो अच्छे हैं, उन सब का बदला वो पाएंगे जैसे कि बाइबल कहती है। लेकिन आज जो हमारा मजमून है ये थी याद दहानी के तौर पर जो हमने बातें सीखी खुदावंद के कलाम में से। रूहुल कुदस की कुदरत इसलिए दी गई ताकि मसीही जिंदगी का सफर कामयाबी के साथ खत्म किया जाए। रूहुल कुदस की कुदरत इसलिए ईमानदारों को दी गई कि मसीही जिंदगी का सफर कामयाबी के साथ खत्म किया जाए। मसीही जिंदगी गुजारने का मकसद क्या है? पहली बात, जमीन पर यीशु मसीह की नुमाइंदगी करना, ये ईमानदारों के लिए बड़ा एजाज है। जैसे कि इलेक्शन आते हैं, हर कोई कोई ना कोई, कोई हुक्के की नुमाइंदगी करता है, कोई नलके की, कोई किसी भी निशान की। हमारा निशान क्या है? हमारा निशान क्या है? सलीब का पैगाम। और ईमानदार की जिंदगी का मकसद इस जमीन पर है मसीह की नुमाइंदगी करना, मसीही मुसाफर की तरह जिंदगी गुजारना। मसीही एक मुसाफर है जिसे इस दुनिया में भेजा गया है कि मसीह की नुमाइंदगी करे। मसीही ईमानदार क्या है? एक मुसाफर है इस दुनिया में। और दूसरी बात क्या, आज कौन आपके साथ इस मसीही सफर में चल रहा है? पालूस रसूल कहता है कि ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो। आज आपको अपने दाएं बाएं देखने की जरूरत है कि जिस सफर को आप कर रहे हैं उसमें आपके साथ कौन है। अगर कोई है तो खुदावंद कसरत से बरकत दे, अगर नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मसीही जिंदगी का सफर जैसे ही जैसे आप रूहानी तौर पर पुख्ता, रूहानी तौर पर तरक्की करेंगे, बाइबल मुकद्दस कहती है, पालूस रसूल कहता है कि हर कोई मुझे छोड़ गया, दमियस ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि वो दुनिया की तरफ भाग गया, वो दुनिया का हो गया, बाकी कोई मेरे पास न रहा, सिर्फ लूका मेरे पास था। और वो तिमोथियुस को लिखता है कि सिर्फ और सिर्फ लूका मेरे पास है, तू जल्द आ जा। जब आप रूहानी जिंदगी में बढ़ोती पाते हैं, रूहानी जिंदगी में आपकी तरक्की होती है, तो बहुत कम लोग आपको पसंद करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, हालांकि आपके साथ बैठना उठना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि रूहानी मसीही जिंदगी की तरक्की, जो मसीही मुसाफर की तरक्की है, वो रोशनी को जाहिर करती है और तारीकी रोशनी के इर्द गिर्द मंडला नहीं सकती। अगर आप इस दौड़ को, अगर आप इस सफर को जो कर रहे हैं, अगर आपके कोई साथ है तो हाथों में हाथ थाम कर इस सफर को कीजिए, अगर कोई नहीं है तो फिर हौसला हारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मसीही जिंदगी ये वो जंग है जो जिस्म और रूह की है, जिसे पूरा करना जरूर है। मेरे साथ एक हवाला देखें, पहला पत्रस उसका दो बाप उसकी नामी आयत से देखेंगे। पहला पत्रस उसका दो बाप उसकी नामी आयत में क्या लिखा है? तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कहनों का फिरका, मुकद्दसों मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियों को जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई। 11वीं आयत को नोटिस करें, ए प्यारो यानी के ईमानदारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं। पत्रस कहता है कि मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। ईमानदार इस दुनिया में मुसाफर के तौर पर है, यीशु मसीह की नुमाइंदगी के लिए इस तारीकी की दुनिया में भेजा गया है कि नूर का फर्जंद बने, ताकि जो लड़ाई जिस्मानी ख्वाहिशों की रूह के साथ है उसमें हम फतेहमंद जिंदगी गुजारें। ये फतेह यीशु मसीह ने ईमानदारों को दी है और ये फतेह का गलबा बहुत ही बड़ा है। इस फतेह में जिंदगी गुजारना बड़े ही अजमत का बायस है ईमानदारों के लिए। सॉरी, ईमानदार इस जमीन पर मुसाफर परदेसी हैं और आजमाइश और ख्वाहिशात और इम्तहान से, मुश्किलात से, परेशानी से, दुख से, मुसीबत से, हर एक मसीही ईमानदार का सामना जरूर है। हर एक मसीही ईमानदार का सामना जरूर है। इस दुखों की वादी से हर मसीही मुसाफिर को गुजरना जरूर है। इस आंसुओं की वादी से गुजरना जरूर है ताकि पुख्तगी हासिल हो, ताकि बालग बने, यानी के पुख्ता ईमानदार बने। जरूर है ताकि मसीह के हम शक्ल बनकर इस जमीन पर जिंदगी गुजारें। और बाइबल मुकद्दस हमें बड़े वाजिया तौर पर सिखाती है, जब हम जबूर 84 को देखते हैं तो हम इसे गाते हैं, खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है, ठिकाना तेरा मिन्नू चंगा लगा है, मेरी जान जांदी तेरी बारगानू, मेरा मन मेरा तन भी करदा सना है। और बाइबल मुकद्दस में क्या कहता है जबूर नवीस 84 में, कि मेरा दिल मेरी जान मेरी रूह तेरे लिए तरसती है, जैसे अबाबील ने अपना आशियाना बनाया है। अबाबील ईमानदारों की जिंदगी को जाहिर करती है। और बाइबल मुकद्दस अबाबील को, यानी के छोटे किस्म का अकाब जिसे शिकरा कहा गया है, और यसाया नबी इसे यू बयान करता है, जब हम यसाया 40वां बाप उसकी 31वीं आयत को देखे हैं तो वो ईमानदारों को कहता है वो अकाबों की मानद हैं, वो अरसरे नौ जोर हासिल करेंगे, वो बाल पर से उठेंगे, वो ना थकेंगे ना मांदा होंगे, क्योंकि उनकी कुवत खुदावन से आती है। और 84 जबूर में जब हम 6 आयत को देखते हैं, मेरे साथ निकालें, तो वहां पर क्या लिखा है जबूर 84 उसकी 6 आयत में, लिखा है 5वीं आयत से आपके लिए पढ़ूंगा, मुबारक है वो आदमी जिसकी कुवत तुझ से है, यानी के ए यहोवा खुदा मेरी कुवत तुझ से है, जिसके दिल में सहून की शाहराहें हैं। जब हम इन ईमानदारों को देखते हैं, जब वो ज़ियारत के लिए, जब इबादत के लिए सहून में पहाड़ी इलाका में पहाड़ों पर जाते थे, पहाड़ी इलाका में जो यरूशलम की पहाड़ियों पर सहून यानी के दाऊद का शहर था, उसमें जाते थे खुदावन की बारगाहों में उसकी इबादत करने के लिए, तो उनके पास कोई नक्शा या कोई और चीज नहीं होती थी, क्योंकि उनके दिल में सहून की शाहराहें थी, उनके दिल में उनके दिमाग में सहून के रास्ते थे, और वो प्रस्तुति करते हुए खुदावन की इबादत के लिए जाते थे। और लिखा है 6 आयत में, वो वादिये बुका से गुजरकर उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं, मगर पहली बारिश उसे बरकतों से मामूर कर देती है। वादिये बुका से क्या मुराद है? जब हम वादिये बुका को देखते हैं तो वादिये बुका का मतलब है आंसुओं की वादी, यानी के महतम की वादी। और ईमानदार जो सफर मसीही सफर है, ये सफर आसान नहीं बल्कि ऊंचे नीचे रास्ते इम्तहान आजमाइशें मुसीबतें दुख तकलीफें आती हैं। लेकिन आज इस मसीही सफर में आपके साथ कौन है? क्या आपका बाप, क्या आपकी माँ, आपका भाई, बेटा, दोस्त, रिश्तेदार, कलीसिया में से कोई और इस सफर में है? और वादिये बुका यानी के आंसुओं की वादी बुलसान, जब हम इसकी तफसील को देखते हैं तो शतूत यानी के तूत बालसूम के दरख्त की वादी, यानी के मातम की वादी, आंसुओं की वादी, और आंसुओं की مانند اس درخت سے جو بلسام کہلاتا ہے گونت ٹپکتی تھی، اور یہ ایمانداروں کا سفر ہے کہ وہ اپنے سارے دکھ میں، ساری تاریکی میں، ساری ناکامیوں میں، ساری پریشانیوں میں، آزمائشوں میں، امتحانوں میں اپنے خداوند کے لیے یہ بات کو نظر رکھتے ہیں، مد نظر کے اس کے حضور اس کی عبادت، اس کی پرستش، اس کی عقیدت کریں اور اس کے حضور حاضر ہوں. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت خداوند سے ہے، جس کے دل میں سہون کی شاہراہیں ہیں. آج خداوند صرف یروشلم کے اس مقدس میں، اس ہیکل میں نہیں، بلکہ وہ آپ کو کہیں بھی مل سکتا ہے، وہ آپ کے اندر ہیں. آج جو سفر آپ کر رہے ہیں، جو آنسوؤں کی وادی سے آپ گزر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے روحانی پختگی یعنی کہ ترقی دینے کا عمل ہے، جس میں سے ہر ایک ایماندار کو گزرنا ضرور ہے. اور لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت زندہ یہوہ خدا سے ہے، جس کے دل میں خداوند کے ہیکل کی طرف جانے کی راہیں ہیں، جس کے دل میں خداوند کے لیے خواہش ہے کہ اس سے جا کے سیکھے، جس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ جیسے ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنایا جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے، ایماندار بھی خدا کی حضوری میں پناہ لینے کے لیے ہر روز مسلسل طور پر اسے دیکھیں. اور کیونکہ خدا ہی ہماری پناہ گاہ ہے، اس کے علاوہ ہماری پناہ گاہ کوئی بھی نہیں ہے. وہ لوگ دلی طور سے جانتے تھے کہ کہاں جانا ہے، وہ سہون کے راستوں سے واقف تھے. کیا آج آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کہاں جانا ہے، آپ کا راستہ کیا ہے، آپ کے پاس وہ کون سا ذریعہ ہے کہ آپ اس آنسوؤں کی وادی سے، اس ماتم کی وادی سے، اس تاریکی کی دنیا میں جو مسیح کی نمائندگی، روشنی کی نمائندگی کر رہے ہیں، کس بنا پر کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو دو باتیں سکھائی تھی مسیحی کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، وہ کون سی تھی؟ پہلی بائبل مقدس، دوسری روح القدس کی قدرت. یہ دو بنیادی ذریعے ہیں مسیحی سفر کو طے کرنے کے لیے. بائبل مقدس ہمیں نقشے کے طور پر دی گئی ہے. بائبل مقدس ہمیں نقشے کے طور پر دی گئی ہے اور روح القدس کی قوت ہمیں مسلسل طور پر راہ دکھانے کے لیے، راہ میں چلنے کے لیے دی گئی ہے. اور یہ جو راستہ ہے، یہ کٹھن مصیبتوں کا، دکھوں کا، مصیبتوں کا اور ہر طرح کے برے حالات کا ہے، جس میں آپ کے اپنے گھر کے لوگ بھی اپنے مخالف آپ کے ہو سکتے ہیں، آپ کے اپنے شہر کے لوگ آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں، آپ بہت سے حالات کا سامنا کر سکتے ہیں. اور اس راستے کو طے کرنے کے لیے ہمیں نقشہ کی ضرورت ہے. اور وہ نقشہ کیا ہے؟ بائبل مقدس. بائبل مقدس جب ہم یشوا کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو خدا اسے کیا سکھاتا ہے؟ ساتویں آیت سے دیکھتے ہیں، تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ اختیار رکھ اور اس ساری شریعت پر عمل کر جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھے دیا ہے. یہاں پر خدا موسیٰ کی شریعت، ہمیں موسیٰ کی شریعت پر عمل نہیں کرنا، بلکہ وہ باتیں جو ہماری تربیت کے لیے لکھی گئی ہیں ان سے سیکھنا ہے. ہمیں 10 احکام سے، ان پر عمل کرنے سے کوئی روحانی پختگی حاصل نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں ان باتوں سے سیکھنا ہے، ان बातों से सीखना है। ये हमारे लिए बाइबल मुकद्दस नक्शा है जो हमारी रहनुमाई करेगी। और आठवीं आयत में क्या लिखा है, सातवीं आयत के दूसरे हिस्से में, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। जब खुदा का कलाम हमारी राहों में होगा, हमारी जिंदगी में होगा, लिखा है शरीयत की ये किताब यानी कि खुदा की तालीम, उसकी सच्ची बातें तेरे मुंह से ना हटे बल्कि दिन रात उसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उन सब पर तू इख्तियार करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। बाइबल मुकद्दस है जो हमें मसीही सफर में कामयाब होने के लिए दी गई है। और ये मसीह की अकल है, पहला ग्रंथियों 2 बाब उसकी 16वीं आयत में ये यीशु मसीह की अकल हमें दी गई है, ताकि उसकी अकल को इस्तेमाल करें इस सफर को तय करने के लिए। और दूसरा तमोथियस 3:16-17 आयत में, ये खुदा का वो अलहाम है यानी कि मसीह की अकल, मसीह की सांस, जो ईमानदारों की तालीम, तरबियत, नसीहत, सलाह और रूहानी पुख्तगी में तामीर करने के लिए फायदा मंद है। और ये सच्चाई दी गई है और रूहुल कुद्दस की कुदरत जो हमारी कुवत है, कुवत के तौर पर दी गई है, ताकि हम उस सफर को मसीह की कुवत में मुकम्मल करें और उन अनामात को और उन अजरों को हासिल करें जो खुदावंद यीशु मसीह ने ईमानदारों के लिए रखे हैं। जब हम दूसरी कुवत को देखते हैं जो हमें दी गई है, जो हमें जिरिया दिया गया है बरकत का, वो क्या है, रूहुल कुद्दस की कुदरत। जब यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाप उसकी 13वीं आयत को देखते हैं तो वहां पर क्या लिखा है, मेरे साथ निकालें, लिखा है, लेकिन जब वो सच्चाई का रूह आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। रूहुल कुद्दस जो जमीन पर मौजूद है और हर एक ईमानदार के अंदर है, वो हमें सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, जो कुछ सुनेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो हमें हमारा रास्ता तय करने के लिए, मसीही सफर तय करने के लिए हमें वो तमाम मालूमात देगा कि किस तरफ जाना है, किस रास्ते पर दुख, मुसीबत, तकलीफ है, और वो हमें मजबूत करेगा, हौसला फजाई देगा। और खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए जो चिराग और राह के लिए रोशनी है, और रोशनी से मुराद के ये दुनिया तारीकी है, हम तारीकी में चल रहे हैं और हमें नूर और रोशनी की जरूरत है। जो नक्शा बाइबल मुकद्दस ईमानदारों को दी गई है, वो नक्शा हमें इस्तेमाल करने की जरूरत है। आज बहुत से ईमानदार खोए हुए हैं, आज बहुत से ईमानदार अपने रास्ते से भटके हुए हैं, आज बहुत से ईमानदारों का दम रास्ते ही में घुट जाता है, आज बहुत से ईमानदार अपनी हालत को भूले हुए हैं, क्योंकि उनकी सोच, उनका ध्यान दुनिया की तरफ है। लेकिन क्या लिखा है कि खुदा के कलाम पर दिन रात तेरा ध्यान रहे, तब ही तू खूब इकबाल मंद होगा, तब ही तू खूब कामयाब होगा। और ये कामयाबी जब हासिल होगी, जब हासिल कब होगी, जब यीशु मसीह आएगा और ईमानदारों को अनामत देगा। मकाशवा की किताब में और बहुत से अनाम और अजर हैं, लेकिन वक्त के लिहाज से हम बाद में सीखेंगे। लेकिन आज आपके पास जो बाइबल मुकद्दस नक्शे के तौर पर है, रूहुल कुद्दस की कुदरत आपकी कुवत के तौर पर है, आज आप किस किस्म के मुसाफर हैं? यीशु मसीह ने तमसील के तौर पर मत्ती की इंजील उसके 25वें बाप में कहा कि एक आदमी का सा हाल है कि वो परदेश गया और उसने अपने नौकरों को एक को 5 तोड़े दिए, एक को 2 तोड़े दिए और एक को गालबन 1 तोड़ा दिया। उन्होंने 5 वाले ने 5 कमाए, 2 वाले ने 2, गालबन 2 या 3 का जिक्र मिलता है, उन्होंने बनाए, लेकिन जिसे एक मिला उसने उसे दबा दिया, उसे कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। आज अपनी जिंदगी में देखने की जरूरत है कि आप कैसे नौकर हैं, आप कैसे खादम हैं, आप कैसे मसीही मुसाफर हैं, कौन सी बरकात और नेमतें उसने आपसे बाज रखी हैं। आज अपनी जिंदगी में इस बात को देखें। और जिन्होंने उन तोड़ों से काम किया उन्हें यीशु मसीह ने कहा, शाबाश मेरे वफादार नौकर, तू मेरे साथ मेरे बाप की बादशाही में क्या ठहरेगा? मकबूल ठहरेगा। लेकिन जिसने सही काम नहीं किया वो खुदा की बादशाही में उस अजर से, उस अनामत से महरूम हुआ। आज आपके पास ये चुनाव है कि आप उन नेमतों, उन बरकात को इस्तेमाल करते हैं और अच्छे मसीही खादम की तरह इस जमीन पर जिंदगी गुजारते हैं, और जो कुछ आपके पास है उसे थामे रहें, क्योंकि वो आएगा और हर एक के काम के मुआफ़क अजर देगा। आए हम खुदावंद के हुज़ूर झुकें। आसमानी बाप, हमें हर रोज अपनी हालत को पहचानने की कुव्वत और ताकत दे। तेरा कलाम जो हमारे लिए आईने के तौर पर है, हम अपनी हालत को पहचाने कि हम कहां पर हैं। अगर खोए हुए हैं तो तू हमें राह दिखाता है। खुदा बाप, हमारी मदद और रहनुमाई कर और तेरे कलाम की रोशनी में मसीही मुसाफिर की तरह तेरी नुमाइंदगी करें। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं। आमीन।